आज श्रील जयदेव गोस्वामी और श्रील लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप, ये भजन जो हम वैष्णवाचार्यों के तिरुभाव दिवस पे गाते हैं इसे गाएंगे। ये अनिल प्रेम धन करुण प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुण प्रचुर, जे अनिल धन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनाता, मोर स्वरूप रूप कहा सनाता, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोर भट्ट युग कहा कबीरा, कहा कबीराज, एक काले कोथा गेला गौर नटरा,
काले कोथा गेला गौर नटरा अशने कुटी बो माथा अनाले कशिब अनाले पर्थोशने कुटिब माथा अनाले कशिब निधे कोथा गेले पाबो गौरंग गुनेर निधे कोथा गेले पाबो संगे जे कोई लविलास सब संगीर संगे जे कोई लविलास से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Thank you. Vaishnava Thakur Jaya, Vaishnava Thakur Jaya, Vaishnava Thakur. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Jaidev Goswami Pad Ki Jai Shri Shri Lochandas Thakur Mahashay Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Guru Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanayas Taddhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Premapumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatra Darahana Paraha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी भक्ति के इतिहास में बहुत बड़े कवि और भक्त माने जाते हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनके गीत गोविंद इस काव्य शास्त्र के लिए, जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधारानी और उनके पार्षदों की लीलाओं का वर्णन किया है वृंदावन में। ये बहुत ही एक उच्च श्रेणी का ग्रंथ है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसे मानते हैं कि ये ग्रंथ बहुत गुह्य है और ग्रंथों में से चूड़ामणि है। स्वयं श्री जयदेव गोस्वामी भी गीत गोविंद में बताते हैं कि जो भी अपने मन को श्री कृष्ण की लीलाओं में के समुद्र में डुबाना चाहता है, उसको ये गीत गोविंद पढ़ना चाहिए, मन को प्रसन्न कर लेना चाहिए। गीत गोविंद का नाम तो अनेकों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने पढ़ा है और भी कम लोगों ने समझा है, क्योंकि यह विषय इतना ऊंचा है, इतना गुह्य है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए भी ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के बाद भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमारे संस्था के भक्तों को चेतावनी दी थी कि तैयारी होने के पहले इस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर कविता के रूप में लिखी गई है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो साहित्य आदि पढ़ते हैं विश्वविद्यालयों में आदि, और जो तरह तरह के ग्रंथों का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग साहित्यकार आदि गीत गोविंद का अध्ययन भी करते हैं, परंतु इसका गूढ़ तत्व समझ नहीं पाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है। इस ग्रंथ को पढ़ने पर भी ये लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, बल्कि गलत ही समझेंगे। और क्योंकि इसमें कृष्ण और श्रीमती राधारानी की लीलाओं का वर्णन है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन के भक्तों को चेतावनी दी थी कि ऐसे जाके ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि विरला ही कोई भक्त होते हैं जो इतने दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं कि वो अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे और गलत नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी जिसका हृदय शुद्ध है, वो जब गीत गोविंद पढ़ता है तो निश्चित ही उसे दिव्य कृष्ण प्रेम के रस का स्वाद मिलता है। गीत गोविंद इसके 12 विभाग हैं, जिनको सर्ग कहते हैं। जयदेव गोस्वामी ने इनको सर्ग बताया, जैसे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, तो गीत गोविंद के 12 सर्ग हैं और 24 प्रबंध, प्रबंध अर्थात गीत हैं, जिनमें से दशावतार स्तोत्र एक है, शीत कमला ये दूसरा है, ऐसे अनेक गीत हैं। तो ये दशावतार स्तोत्र तो हम गाते ही हैं अनेकों बार, इसलिए जयदेव गोस्वामी का नाम हम सब ने सुना ही है, साधारण व्यक्ति ने भी सुना है, क्योंकि दशावतार की बात तो सभी जानते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना की थी जगन्नाथपुरी में। ये ग्रंथ जगन्नाथपुरी मंदिर में कितना महत्वपूर्ण है और जगन्नाथ की सेवा प्रणाली से इसका कितना गहरा संबंध है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा आज करेंगे। विशेष करके इसलिए कि अब जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत करीब है, थोड़े ही दिनों में हम रथ यात्रा का उत्सव मनाने जा रहे हैं, साथ साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी भी यहाँ पे हमारे राधा गोकुल आनंद मंदिर में विराजमान हैं, और आज जयदेव गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस भी है। तो वैसे जयदेव गोस्वामी के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन विशेष करके आज हम जयदेव गोस्वामी के संबंध में उन लीलाओं का वर्णन करेंगे जो कि जगन्नाथ देव और जगन्नाथपुरी से संबंधित है। वैसे जयदेव गोस्वामी का जन्म लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ। विद्वानों में ये एक मतभेद है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। कई कहते हैं कि ये बंगाल में है, कोई कहते हैं उड़ीसा में है, कोई कहते हैं दक्षिण भारत में है, परंतु अब विद्वानों का एक मत रहा है कि उनका जन्म केंदु बिल्व नाम के गांव में उड़ीसा में हुआ था, और ये प्राय सभी विद्वान इस बात को मानते हैं। तो ऐसे बताया जाता है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसे मानते हैं कि जयदेव गोस्वामी पहले रहा करते थे बंगाल में नवद्वीप इलाके में। लक्ष्मण सेन उस समय राजा थे वहां के। उनके दशावतार स्तोत्र को जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें निवेदन किया कि आप आइए हमारे महल में रहिए। जयदेव गोस्वामी एक विरक्त व्यक्ति थे, उनको राजमहल में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया। राजा निराश तो हुए परंतु उन्होंने जोर नहीं किया और कहा कि मैं आपके लिए चांपाहाटा नाम के गांव में, जो कि वैरागी लोगों के लिए जो ध्यान करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, बहुत उपयुक्त है, मैं आपको वहां एक कुटिया बना देता हूं, और वहां पे ही द्विज वाणीनाथ कह के एक भक्त थे भगवान के, जिन्होंने सत्ययुग में महाप्रभु का दर्शन किया था। महाप्रभु उसी स्थान में प्रकट हुए थे, यद्यपि महाप्रभु की प्रकट लीला तो कलयुग में हुई, लेकिन सत्ययुग में ध्यान में वो प्रकट हुए थे, और वहां पे चंपक फूल आदि बहुत सुंदर मिलते हैं और फूलों का बाजार भी है, इसलिए इसका नाम है चांपाहाटा। मेरा सौभाग्य है कि 2 साल पहले मैं इस स्थान में, मुझे जाने का सौभाग्य मिला, वहाँ जयदेव गोस्वामी का स्थान भी है जहाँ रहा करते थे, महाप्रभु के पार्षदों की लीलाएं भी वहाँ हुई हैं। ये मायापुर से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वहाँ से भी जयदेव गोस्वामी पुरी चले गए। इसके पीछे कारण ये है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने जयदेव गोस्वामी को आदेश दिया कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ और मैं वहाँ जब कलयुग में आगे मैं जब प्रकट हो जाऊँगा तो मैं भी संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में ही आऊँगा। वैसे जयदेव गोस्वामी को जब पता चला कि यहाँ पे अब महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं तो उस स्थान को छोड़ने की इच्छा उनकी नहीं हुई, परंतु महाप्रभु का आदेश था और वहाँ भी जगन्नाथ हैं भगवान, तो इसलिए वो वहाँ पे चले गए। इसके पहले अजय नदी में उन्हें उनके प्रिय राधा माधव विग्रह मिले और उस दिन से उन्होंने अपने राधा माधव विग्रहों की बड़े प्रेम से सेवा की। जगन्नाथपुरी में आने के बाद वो वहाँ रहे अनेकों वर्ष। उड़ीसा में जयदेव गोस्वामी की कथाएं, उनके ग्रंथ ये बहुत प्रसिद्ध हैं और उड़ीसा के और विशेष करके जगन्नाथ देव के भक्ति के संस्कृति से बहुत ही जुड़े हुए हैं। जयदेव गोस्वामी के का जन्मदिन ऐसे कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिवस पर हुआ था, तो उस दिवस पर एक दो दिन की संकीर्तन यात्रा निकलती है। भुवनेश्वर में एक अनंत वासुदेव मंदिर है, वहाँ से शुरू हो के फिर कोणार्क आदि से होकर फिर ये जगन्नाथपुरी मंदिर तक ये यात्रा पहुँचती है, दो दिन की यात्रा। और माधव पटनायक नाम के एक वैष्णव ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वैष्णव लीलामृत, जिसमें कि वो वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ में उड़ीसा में सब जगह कीर्तन किया करते थे, खास करके जगन्नाथपुरी के आसपास में। और उन्होंने ये अनंत वासुदेव मंदिर भुवनेश्वर से लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा थी वो भी की थी अपने भक्तों के साथ में। और अनंत वासुदेव मंदिर से आते हुए पुरी की ओर केंदुबिल्व नाम ये गांव भी पड़ता है, जिसमें ऐसे मानते हैं कि श्री जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था। फिर वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ में गीत गोविंद गाया था। तो इस कथा के पीछे अब जो वैष्णव हैं उड़ीसा में वो लोग जयदेव गोस्वामी के आविर्भाव दिवस पर ये संकीर्तन यात्रा निकालते हैं। अक्षय तृतीया वो दिन है जबकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ बनाना शुरू हो जाता है, हर साल नया रथ बनाते हैं और ये अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होता है ये कार्य। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी का कितना गहरा संबंध जगन्नाथपुरी से है वो आगे चल के अभी हम देखेंगे। वो आके बसे जगन्नाथपुरी में, एक विरक्त व्यक्ति थे, नवयुवक थे और अपने राधा माधव की सेवा करते करते वो जगन्नाथ जी की सेवा भी करते, बस वह मग्न थे। एक दिन ऐसे हुआ कि दक्षिण कलिंग भाग से एक ब्राह्मण आए वहां अपनी पत्नी को लेकर। ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा और वो बहुत शुद्ध भक्त थे जगन्नाथ के। तो जब आए तो एक कमल पुष्प भी साथ में लेकर आए जो कि उन्होंने जगन्नाथ जी को अर्पण किया। अनेक स्तुति पाठ आदि की, दर्शन आदि किया, फिर उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की अपने पत्नी के साथ कि अनेक वर्ष हुए हैं परंतु हमारा कोई संतान नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं हमें मिला है, तो ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, एक संतान प्रदान कीजिए। तो उस रात में जगन्नाथ भगवान स्वयं सपने में आए देव शर्मा को और कहा कि शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपको संतान होगा। तो बड़े खुशी से फिर जगन्नाथ मंदिर में जाके देव शर्मा ने वचन दिया भगवान को कि यदि ये बच्चा लड़का होगा तो इसे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा, पुजारी आपका बन जाएगा, आपकी सेवा में हमेशा यहाँ रहेगा, और यदि लड़की हुई तो लड़की को भी आपकी सेवा में लगाऊंगा, वो देवदासी बन जाएगी। उस जमाने प्रथा होती थी कि कोई तरुणी जो है कन्या वो आके यहाँ जगन्नाथ जी के लिए नृत्य आदि कर सकती थी। ये प्रथा थोड़ी देर बाद चालू हुई, परंतु ऐसे वायदा देव शर्मा ने किया। फिर वो चले गए और एक बच्ची हुई, तो उन्होंने बच्ची का नाम रखा पद्मावती, क्योंकि उन्होंने एक पद्म पुष्प जगन्नाथ को अर्पण करने के बाद ये इच्छा पूरी हुई थी, तो बच्ची का नाम रखा पद्मावती। और फिर जब पद्मावती की आयु बढ़ गई, जब वो विवाह के आयु की हो गई, तो उस समय वो जगन्नाथपुरी में आए। इसके थोड़े ही समय पहले जयदेव गोस्वामी बंगाल से यहाँ जगन्नाथपुरी में आए थे। वैसे जयदेव गोस्वामी के पिता का नाम था भोजदेव और माता का नाम था वामदेवी। तो वो एकांत स्थान में रह रहे थे, तो जब देवदासी बनाने के लिए अपनी पुत्री को देव शर्मा आए थे जगन्नाथपुरी में, तो रात में उनको सपना आया। स्वप्न में जगन्नाथ भगवान ने कहा, नहीं, इसे देवदासी नहीं बनाना, इसके लिए मैंने एक वर ढूंढ लिया है। ये अमुक स्थान में, वहां पे जाओ और वहां पे जयदेव नाम का एक ब्राह्मण बैठा है, अपने राधा माधव विग्रह की सेवा कर रहा है, तुम्हारी पुत्री का विवाह उससे कराना तुम। तो देव शर्मा को बहुत आनंद हुआ, बड़े प्रसन्नता से अपने पुत्री को ले गए। और जयदेव गोस्वामी को तो इस समय कुछ पता ही नहीं था ये क्या है, उन्होंने सोचा था मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण आए, कहा कि ये मेरी बेटी है, ये आप जगन्नाथ जी की इच्छा है, ये आपकी पत्नी है, अभी ले लीजिए, हम वो चले गए। ये देखते रह गए, ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे, हम तो अभी विरक्त रहना चाहते हैं, और ये अचानक ऐसे आके बस अपनी बेटी को रख के चले गए, मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया, जगन्नाथ जी की इच्छा हमने पूरी की, अभी आपको विवाह करना है, चले गए। वो तो थोड़े हैरान हो गए कि अरे ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक आके ऐसे कर देना है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये जगन्नाथ जी की योजना है, जगन्नाथ जी की इच्छा है, फिर उन्होंने स्वीकार किया। तो हाँ, भक्त समाज में देव शर्मा का अनुकरण नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर, तो फिर विवाह हुआ जयदेव गोस्वामी और पद्मावती देवी का। और पद्मावती भी बहुत शुद्ध भक्त थी भगवान जगन्नाथ की, भगवान कृष्ण की। और उनकी जीवन शैली बड़ी सरल थी, ब्राह्मण थे दोनों, और जैसे ब्राह्मण रहा करते थे उसी प्रकार से रहते थे। जयदेव गोस्वामी बिल्कुल मग्न रहते थे अपनी कविता लिखने में, भजन में, अपनी राधा माधव की सेवा में, और उन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया। और ये गीत गोविंद ग्रंथ आज तो सभी को पसंद है और विश्व प्रसिद्ध है, परंतु अनेक लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान इसको कितना पसंद करते हैं, विशेष करके भगवान जगन्नाथ इस गीत गोविंद ग्रंथ को, इस काव्य शास्त्र को बहुत पसंद करते हैं। यहां तक कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना में भी बहुत योगदान दिया। तो एक दिन हुआ ये कि जयदेव गोस्वामी ग्रंथ की रचना किए जा रहे थे, जैसे जैसे उनके चित्त में श्लोक आए जा रहे थे वैसे वो लिख रहे थे विभिन्न छंदों में। कई छंद ऐसे थे जो उस समय की भाषा में प्रचलित थे, कई ऐसे थे जो शुद्ध संस्कृत छंदों के ऊपर आधारित थे। तो लिखते लिखते अचानक उनके मन में ये भाव आया और ये श्लोक लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, परंतु समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इसका अर्थ ये निकला कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं, और कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय की वेदना को आप नष्ट कर दीजिए, हम आपके शरण में हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो ये श्लोक लिखने जा रहे थे कि मेरे हृदय में, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, एक विष है और वो है कि मेरा आपके प्रति आकर्षण है, राधा रानी को कह रहे हैं। तो इसलिए इस विष को दूर करने के लिए तो कृपया आपके चरण कमलों को मेरे सर का एक आभूषण बनाइए, मेरे सिर को मंडित कीजिए आपके चरण कमलों से। तो ऐसे जब विचार मन में आया जयदेव गोस्वामी के, तो वो हिचकिचाए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना सेवा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में होती है, हर लोक में होती है, और यही स्वामी, यही भगवान जो है, ये उनके भक्त के चरणों में जाके ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। फिर उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए अभी मेरे ग्रंथ की रचना करना काम छोड़ दे, थोड़ा विचार कर ले इसके बारे में। तो अपने मध्यान्ह की सेवा आदि कार्यों को करने के लिए वो चले गए, स्नान करने चले गए नदी में, गंगा। तो जब वो चले गए गंगा में, जो पास में नदी थी, तो जब वो चले गए थोड़ी ही देर बाद फिर से वो चले आए। वास्तव में वो जयदेव गोस्वामी नहीं थे, लेकिन दिखते थे बिल्कुल जयदेव गोस्वामी जैसे, बात भी करते थे उन्हीं की तरह। तो पत्नी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी गए थे, अभी जल्दी आए, ठीक है चलो अब प्रसाद के लिए बैठ जाओ। तो प्रसाद दिया, प्रसाद के लिए बैठ गए, प्रसाद पा लिया और फिर उठ के अंदर कमरे में चले गए। और वहाँ पे जो श्लोक जयदेव गोस्वामी ने अधूरा छोड़ा था वो उन्होंने जाके पूर्ण कर दिया। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। और जैसे ही वो अंदर जाके, एक मिनट भी नहीं हुआ था वो श्लोक उन्होंने पूर्ण किया, तब असली जयदेव गोस्वामी दरवाजे से अंदर आए। तो पद्मावती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी अभी तो आप कमरे में इस तरफ अंदर गए थे, अब यहां दरवाजे के बाहर से अंदर कैसे आए। और उस समय पद्मावती देवी प्रसाद ले रही थी। तो जयदेव गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रही हो, मैं तो अभी अभी आया, मैं कहां अंदर गया था पहले, मैं तो अभी बाहर से आया स्नान करके। और जयदेव गोस्वामी को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि उनकी पत्नी उनके पहले प्रसाद लेने के लिए बैठी है। वैसे रोज जब जयदेव गोस्वामी प्रसाद लेते थे तो फिर उसी थाली में उनकी पत्नी पद्मावती देवी प्रसाद लेती थी, लेकिन आज जयदेव गोस्वामी ने आके देखा कि अरे हम उनसे पहले बैठ गई। अब जयदेव गोस्वामी को यह नहीं पता था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ आए हैं, उन्हीं का रूप धारण करके आए, उन्होंने प्रसाद पाया और अंदर गए। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि क्या बात है। तो पद्मावती देवी ने भी सोचा कि कुछ तो है इसमें, तो जल्दी से कमरे में अंदर चली गई, देखा कि वहां पे कोई नहीं है और वहां पे केवल एक हल्का सा सुगंध है फूलों का और चंदन का। और जब जयदेव गोस्वामी वहां आए, फिर दोनों पति पत्नी उस तालपत्र में गए जिसके ऊपर जयदेव गोस्वामी ग्रंथ की रचना कर रहे थे। और जब जयदेव गोस्वामी ने देखा कि वो श्लोक पूर्ण हुआ है, क्योंकि पद्मावती देवी ने कहा कि आप तो जाके बैठे थे, आपने ही जाके पूर्ण किया ये श्लोक, तब जयदेव गोस्वामी को पता चला कि क्या हुआ है। तो वो बेहोश होकर गिर पड़े, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के प्रकट हो गए। और फिर जब वो बाह्य चेतना को प्राप्त कर गए, तुरंत दौड़ते हुए अपनी पत्नी जो प्रसाद ले रही थी, पत्नी की थाली से वो प्रसाद लेने लगे। पत्नी ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि अरे अरे क्या कर रहे हो। उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो तो स्वयं भगवान जगन्नाथ है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने इस थाली में से प्रसाद लिया और ये उनका महाप्रसाद है। और इतना ही नहीं, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुमने स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन किया और उनकी सेवा की और तुमने उनका महाप्रसाद भी ग्रहण किया, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जयदेव गोस्वामी ने पूरा दंडवत अपने पत्नी को लगाया कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें जगन्नाथ जी का दर्शन मिला, मुझे नहीं मिला। मैं ये सब लिख रहा हूं लेकिन दर्शन तुम्हें हुआ। वैसे ये जान लो कि जगन्नाथ श्री कृष्ण ही पिता, तुम्हारे पिता हैं, पति हैं वास्तव में। वो सारे प्रत्येक जीव के पति वास्तव में जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं। फिर ऐसे ये महत्वपूर्ण लीला हुई, ऐसे समय समय पर जगन्नाथ भगवान आके ऐसे योगदान देते थे इस गीत गोविंद की रचना में। तो कोई ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। जब गीत गोविंद की रचना कैसे होती थी, कभी कभी वो लिखते थे, कभी कभी पद्मावती देवी लिखती थी और वो केवल गाते थे, ऐसे अलग अलग। कभी कभी जब रचना होते तो वो बोलते थे रचना करते हुए, तो पद्मावती देवी उसको गीत के रूप में गाती थी। तो ऐसे पति पत्नी के बीच में ऐसे सहयोग से ये गीत गोविंद की रचना होती गई। फिर जब रचना समाप्त हुई तो जयदेव गोस्वामी के मन में एक इच्छा हुई कि गीत गोविंद का वस्त्र मैं जगन्नाथ भगवान को पहनाना चाहता हूं। आपको तो पता है कि उस समय में कागज प्राय नहीं हुआ करता था, ये 1000 साल पहले की बात है। तो और ताल पत्रों में लिखा जाता था। अब ताल पत्रों में लिख के ये यदि जगन्नाथ जी के कोमल शरीर पर लगाया जाए तो उनका उनके शरीर को ये चुभेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं क्या किया जाए, तो ऐसे वस्त्र बनाया जाए जिसके ऊपर गीत गोविंद हो। तो बुनाई करने वाले लोग उनके गांव में केंदु बिल व ग्राम में अनेक हुआ करते थे। तो उन्होंने जाके इनसे कहा कि कपड़े के ऊपर अच्छे से अच्छे जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर आप इसका ये बुनाई कर लो, कपड़ा बनाओ साथ साथ गीत गोविंद के श्लोकों की भी बुनाई उसमें कर दो। तो उन्होंने स्वीकार किया और ये सारे लोग बैठे वहाँ बुनाई करने के लिए। और जैसे जैसे उच्चारण करते गाते जयदेव गोस्वामी बड़े मधुर स्वरों में, तो ये लोग बुनाई करते जाते हैं, वो सारे अक्षर एक के बाद एक करते जाते। और एक बार ऐसे हुआ कि वो एक श्लोक का उच्चारण करने जा रहे थे कि जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो एक बार थे साथ में, तो श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना विशेष है, इसका वर्णन वो कर रहे थे कि रासलीला के समय श्रीमती राधा रानी के लिए श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों का त्याग कर दिया। ये श्लोक वैसे काफी प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में विशेष करके, और चैतन्य चरितामृत में भी ये श्लोक पाया जाता है। तो उस श्लोक पर जब वो पहुंचे तो वो रुक गए, भाव विभोर हो गए और बाह्य चेतना उनकी नहीं रही उस समय, अपने ध्यान में इतने मग्न हो गए कि उनको पता नहीं चला। ऐसे प्राय दूसरे लोगों को ऐसे लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो चुके हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आया वहां, एक लड़का था, वो भी युवक था, वो भी वहां आया, डमरू आदि कुछ वाद्य एक वाद्य बजाते हुए आया और उसी श्लोक का उच्चारण करते करते आया। तो जो लोग बुनाई कर रहे थे उन्होंने पूछा, अरे आपको कैसे पता चला ये श्लोक, ये तो गीत गोविंद का श्लोक है। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा, अरे ऐसे मुझे कोई भी चीज अज्ञात नहीं है। वैसे ये श्लोक तो क्या, इसके बाद वाला जो श्लोक भी वो बोलने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। तो उन्होंने वो श्लोक भी गा लिया। कंसारेरपि संसार वासना बंध श्रृंखला राधा माधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी। तो कंसारी कृष्ण का नाम है, कंस के शत्रु, उन्होंने तत्याज व्रज सुंदरी ही, उन्होंने वृंदावन के जो सुंदरियां हैं, जो गोपियां हैं, तत्याज उनको त्याग दिया था। किसके लिए? राधाय, राधाम आधाय हृदये, क्योंकि उनका हृदय श्रीमती राधा रानी के प्रति बहुत तीव्र रूप से आकर्षित था, बंधा हुआ था, इसलिए अन्य गोपियों को भी वो छोड़ के चले गए। तो ये श्लोक बताया और उन्होंने लिख दिया। ये श्लोक बोलने ही जा रहे थे जयदेव गोस्वामी, जबकि वो बेहोश हो पड़े थे। इस समय ये ब्राह्मण आए, तो जब बुनाई करने वालों ने उनकी पहचान, उनका परिचय जानना चाहा, उन्होंने कहा, मेरा नाम है कृष्णदेव और मैं जयदेव का बड़ा भाई हूँ। ये है जयदेव और मैं हूँ कृष्णदेव। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने बुनाई कर दी और वो अपने वाद्य भी बजा रहे थे उस समय, और वाद्य की आवाज आदि सुनकर और श्लोक का उच्चारण की ध्वनि सुनकर जयदेव गोस्वामी को बाह्य चेतना पुनः आ गई। उन्होंने कहा, अरे ये श्लोक का उच्चारण कैसे कर रहे हो आप लोग? और उसी समय वो ब्राह्मण कृष्णदेव, उसने अपने वाद्य वहां रखे, वो ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। और फिर जयदेव गोस्वामी ने सबसे पूछा, ये कैसे हुआ, किसने श्लोक बताया? बोले, आपका बड़ा भाई आया था। मेरा बड़ा भाई? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। रहा, उसने कहा कि उनका नाम था कृष्णदेव और उसने कहा ये श्लोक अभी जयदेव गोस्वामी कहेंगे। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी के सिवाय किसी को नहीं पता ये सब। और तब जयदेव गोस्वामी को फिर से पता चला कि अरे ये तो स्वयं भगवान जगन्नाथ आए थे और उन्होंने भी इस रचना में इस तरह से मदद की थी। फिर से वो भाव विभोर होकर वहां पर गिर पड़े और उन्होंने देखा कि आप सब बुनाई करने वाले कितने भाग्यशाली हो, हमें दर्शन नहीं हुआ लेकिन आपको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ। तो ऐसे करते करते सारे गीत गोविंद जो है कपड़े के ऊपर आया। तो 12 साड़ी लगे, 12 सर्ग थे, हर एक सर्ग के लिए एक साड़ी लग गई। लंबा कपड़ा था वो, जिसको खंडुआ कहते हैं उड़िया भाषा में, उड़ीसा में। तो 12 ऐसे वस्त्र लग गए और ये पूर्ण हुआ वास्तव में अनवसर के समय, जब स्नान यात्रा और रथ यात्रा के बीच में दो जो 15 दिन का, जो 15 दिन की जीव समय की अवधि होती है उसे अनवसर कहते हैं, जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। और उस समय उनके सामने एक बांस का एक पर्दा होता है, आवरण, ताकि आके लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। और वहाँ उनको उनके दैत सेवक जो होते हैं तरह तरह के सेवाएं करते हैं, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि देते हैं, फल का रस आदि पिलाते हैं। तो ऐसे इस अनवसर समय में ये पूर्ण हुआ और ऐसे स्नान यात्रा के 10 दिन बाद पुरी के राजा के रात को उनके स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और उन्होंने कहा, केंदु बिल्व नाम के गांव में जयदेव गोस्वामी नाम के मेरे शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने ये गीत गोविंद ग्रंथ लिखा है और कपड़े के ऊपर बुनाई कर दी है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप ये पहनाओ। तो देखिए, ऐसे राजा भी शुद्ध भक्त हुआ करते थे, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो राजा जाग गए नींद से, तो तुरंत निकल पड़े अपने साथियों को लेकर केंदु बिल्व, और बड़े धूमधाम से बड़े यात्रा निकाल कर जुलूस में, बड़े जुलूस में वापस आए। और उस दिन फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ये खंडुआ, गीत गोविंद वाला खंडुआ जिसमें गीत गोविंद के श्लोक सारे लिखे हैं, वो भगवान को पहनाए। और उस समय जयदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कृष्णदेव की कथा, कि कैसे भगवान जगन्नाथ भी कृष्णदेव के रूप में आए, एक ब्राह्मण के रूप में आए, और उन्होंने ये कंसारीर अपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम ये श्लोक की रचना उन्होंने की थी। तो राजा भी शुद्ध भक्त थे, वो भी भाव विभोर हो गए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन रात को जब भगवान सोएंगे, बड़े वेश श्रृंगार, बड़ा वेश श्रृंगार कहते हैं जो रात का श्रृंगार होता है भगवान जगन्नाथ का, उसमें ये वस्त्र अवश्य उनको पहनाया जाएगा। तो उन्होंने नियम बना दिया। तो उस दिन से आज तक भी, आज भी जो कपड़ा भगवान जगन्नाथ को पहनाया जाता है रात में, बड़ा वेश श्रृंगार कहते हैं रात के समय, तो ये एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है और इसके ऊपर गीत गोविंद के श्लोक होते हैं। तो ये प्रथा आज तक चल रही है और अभी चलती रहेगी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे जितने भी बुनाई करने वालों से कहो कि ऐसे वस्त्र होने चाहिए, और यदि कपड़े के ऊपर सारा गीत गोविंद नहीं आता है तो कम से कम कंसारीर अपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम वाला श्लोक अवश्य इतना तो आना चाहिए। ऐसे आदेश उन्होंने दिया। और फिर वो प्रथा जगन्नाथ जी का विवाह, गीत गोविंद और जगन्नाथ का संबंध ऐसे और गहराई से शुरू हुआ। फिर जयदेव गोस्वामी और पद्मावती देवी दोनों वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में आया करते थे और जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद गाया करते थे। भगवान जगन्नाथ इसे सुनना बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए। और इसके बाद ऐसी प्रथा बन गई। अनेक वर्षों बाद हुआ ये कि राजा जब दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि सुबह मंगल आरती का दर्शन जब हुआ तो जगन्नाथ जी के कपड़े जो हैं फटे हुए हैं और ये सब कांटे वाट सब लगे हुए हैं, कई शरीर में घाव है और धूल आदि लगी है शरीर के ऊपर। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि अरे पुजारी, आप क्या कर रहे हो, कि रात को कैसे सेवा किया आपने, ये सब कैसे हुआ? पुजारियों को भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं कैसे हुआ। तो पुजारी लोग सब डर गए। तो फिर रात को फिर से उस राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पुजारियों का दोष नहीं है, उनको दंड नहीं देना। वास्तव में हुआ ये कि एक भक्त है मेरी, वो तरुणी है, कन्या है, एक वहाँ फूल का बगीचा है, वहाँ पे एक व्यक्ति रहते, उसकी पुत्री है वो, और वो बहुत सुंदर ढंग से गीत गोविंद गाती है। उसने गीत गोविंद ये सारे ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया है और वो बड़े भक्ति भाव से मधुर स्वरों में ये गीत गोविंद गाती है और मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं वहाँ चले जाता हूँ पीछे रात के समय, जब आप लोग सोचते हो कि मैं सो रहा हूं, मैं वहां जाके गीत गोविंद सुनने जाता हूं। तो ऐसे बताया जाता, कभी कभी ये लोक प्रथा है तो उसमें थोड़े बहुत अंतर भी होते हैं। कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है कि ये महिला पद्मावती थी स्वयं, और कई लोग ऐसे कहते पद्मावती नहीं थी, वो वहां के एक माली थे, उसकी पुत्री थी। जो भी हो, बात तो ये है कि जगन्नाथ जी जाया करते थे। तो जब ये बैंगन आदि निकाल रही थी और उसमें से बगीचे में से वो ये कार्य कर रही थी, गीत गोविंद गा रही थी, तो भगवान जगन्नाथ पीछे आके खड़े हो जाते थे। फिर उस महिला को लगता था कि पीछे तो कोई है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि कुछ सुगंध भी आ रहा था चंदन आदि का, फूलों का। तो तुरंत घूम के देखती तो अचानक फिर कोई दिखाई नहीं पड़े, केवल एक हल्का सा सुगंध सूंघने को मिले। फिर और गीत गाते गाते करती, फिर लगता कि कोई है पीछे, फिर से घूम के देखते, फिर देखते कि कुछ नहीं है, केवल सुगंध थोड़ा सा है, कभी कभी छांव सा कुछ दिख जाता था, तो ऐसे पता नहीं चला उसे। और फिर भगवान जगन्नाथ ऐसे चले गए, क्योंकि बैंगन आदि के फूल के बगीचे में भी कांटे बहुत होते हैं, तो भगवान जगन्नाथ इतने मग्न हो जाते थे ये सुनते सुनते गीत गोविंद की, परवाह नहीं करते थे कि अपने कपड़े फट रहे हैं कांटों से लग के, और उनके शरीर के ऊपर धूल रख ली, कब छुपना पड़ता था ना, ये कभी अचानक देख लेती थी पीछे। तो ऐसे अवस्था में फिर वो वापस अपने सिंहासन पर चले जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन ये बात खुल गई, तो फिर जगन्नाथ भगवान ने ये सारी बातें बता दी, तो राजा को इतने आश्चर्यचकित हो गए कि तुरंत फिर उस लड़की के लिए उसको लड़की को पालकी में बिठाकर बड़े धूमधाम से बाजा वाजा वाद्य आदि के साथ ले आए जगन्नाथ मंदिर में। और उस दिन से उन्होंने कहा कि आप यहाँ रोज ये गीत गोविंद गाओगे। जब सपने में आए थे जगन्नाथ राजा के, तो उस समय उन्होंने ये भी बताया था कि जब तक मैं गीत गोविंद नहीं सुनता हूँ, कोई भोग भी मुझे चढ़ाया जाए तो पचता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता भोजन, साथ साथ में रात को नींद भी नहीं आती है, इसलिए मेरे लिए गीत गोविंद सुनना रोज का कार्य है। तो फिर राजा ने सोचा था कि भगवान को क्यों कष्ट लेना चाहिए ऐसे, भगवान रोज जाएंगे, उनके कपड़े फट जाएंगे, शरीर में कांटे लगेंगे और धूल लग जाएगी, भगवान को इतना कष्ट लेना पड़ रहा है गीत गोविंद सुनने के लिए, तो गीत गोविंद उनके लिए यहां पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, गाया जाएगा। तो फिर वो लड़की को यहां बुलाया गया और वो रोज वहां गाती थी, और उस समय से ये देवदासी की प्रथा शुरू हो गई, जो कन्याएं हुआ करती थी। और उनका विचार ऐसे था कि अभी हमारा विवाह भगवान से हुआ है, जगन्नाथ से हुआ है, तो विवाह नहीं करती थी वो। तो ये प्रथा 1935 वर्ष तक चलती रही, मतलब 1000 वर्ष प्राय। केवल सरकार ने, फिर अंग्रेज सरकार ने 1935 में ये कानून बनाया कि ये देवदासी आदि का की पद्धति है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो लेकिन ये 1000 वर्ष तक चलता रहा, ये देवदासियों की प्रथा चलती रही। एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था हमारी पुत्री एक देवदासी बनेगी, केवल जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथ को अर्पण किया जाता था। और वो केवल गीत गोविंद गाती थी, थोड़ी ऐसे देवदासी होती थी जो नृत्य करती थी जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए, गीत गोविंद के ऊपर आधारित। तो एक सारी संस्कृति जो है वो गीत गोविंद पर आधारित हो गई। आज भी अनेक लोग ऐसे होंगे, साधारण दिखने वाले लोग, जो आके गीत गोविंद के श्लोक गाते हैं जगन्नाथ जी के सामने। तो ऐसे कई लीलाएं हैं भगवान के। ऐसे करते करते ऐसे समय बीत गया, तो एक और राजा आए, ऐसे कई पीढ़ियां बीत गईं। ऐसे कहा जाता है कि ये राजा थे महाराज प्रताप रुद्र के पिता, जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। कोई कहते पुरुषोत्तम देव नहीं थे, और कोई थे, जो भी हो, लेकिन एक राजा थे जिन्होंने अभिनव गीत गोविंद लिखा। उन्होंने भी अपने गीत गोविंद की रचना की, और उन्होंने चाहा, वो भी वैसे शुद्ध भक्त थे भगवान के, और ये रचना भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने चाहा कि अभी जो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद सुनाया जा रहा है भगवान को, उसके बजाय ये अभिनव गीत गोविंद सुनाया जाना चाहिए। तो वहां के पुजारियों को पता नहीं चला क्या किया जाए, अभी अभिनव गीत गोविंद सुनाना चाहिए कि जयदेव गोस्वामी वाला पुराना गीत गोविंद सुनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक लोक प्रथा ऐसी है, कथा ऐसी है कि उन्होंने दोनों जो है तालपत्रों को जगन्नाथ जी के सामने रखा सिंहासन के ऊपर रात के लिए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। और सुबह जब दरवाजा खोला गया तो पुजारियों ने देखा कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद जो है वो जगन्नाथ जी के चरण कमलों में अच्छी तरह से रखा था, और जो दूसरा गीत गोविंद था उसके जो तालपत्र वो सब बिखर गए थे, जमीन पर गिरे थे। तो इससे जगन्नाथ भगवान ने संदेश दिया, संदेश भेजा राजा को कि नहीं, मैं जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद ही चाहता हूँ। तो राजा बेचारे बहुत निराश हो गए, उन्होंने सोचा मैं अपने प्राण को त्यागूंगा क्योंकि भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। तो भगवान उनके सपने में आए और उनको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे थोड़े श्लोक लूंगा, स्वीकार करूंगा। फिर उनके अभिनव गीत गोविंद से 12 श्लोक उन्होंने लिए। तो आज जो गीत गोविंद माना जाता है उनमें से 12 श्लोक ऐसे हैं जो विद्वान कहते हैं कि जयदेव गोस्वामी के नहीं थे और बाद में डाले गए। तो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ऐसे कहते हैं कि ये राजा पुरुषोत्तम देव की रचना थी, ये 12 श्लोक गीत गोविंद में जोड़ दिए गए। तो ऐसे राजा हुआ करते थे, ऐसे प्रजा थी, ऐसे भक्त भी हुआ करते थे इस समय, और आज के समय में भी गीत गोविंद का संबंध भगवान जगन्नाथ से चलते आया है। रात को गीत गोविंद खंडुआ वो तो अर्पण किया ही जाता है, साथ साथ में जब नए सेवक आते हैं वहाँ भी एक समारोह होता है, जैसे भक्तों के बीच में दीक्षा का समारोह होता है इत्यादि। तो जो अभी सेवा शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक अनुष्ठान मनाया जाता है, तो उसमें उनको उनके शरीर के ऊपर भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद वस्त्र पहनाया जाता है उनको, और ये लाल रंग का जो गीत गोविंद वाला खंडुआ है वो उनको सर में पहनाया जाता है, बांधा जाता है, ताकि वो समझ लें कि ये गीत गोविंद कितना महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके एक पंडित होते हैं जिनके मुख्य सेवा होता है गीत गोविंद सुनाना जगन्नाथ भगवान को, गीत गोविंद सेवक पंडित कहते हैं उनको। खास करके जब चंदन का लेप आदि लगाया जाता है जगन्नाथ जी के को, तो उस समय वो बैठ के गीत गोविंद पढ़ते हैं। साथ साथ में ऐसी भी कई महिलाएं आदि आती हैं, तुलसी पत्ते के ऊपर वो गीत गोविंद के अलग अलग श्लोक लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है तुलसी, वो उसकी माला बनाते हैं, माला बना के फिर वे जगन्नाथ जी को ये अर्पण किया जाता है। साथ साथ में नवकलेवर जब हर 12 साल 13 साल 19 साल ऐसे समय के हिसाब से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियां जो हैं वो बदली जाती हैं, तो ऐसे एक पद्धति होती है कि ये जो दारू हैं, जो वृक्ष हैं, वो समुद्र में तैरते हुए आते हैं, अमुक समय पर आएंगे, लक्षण ऐसे ऐसे होंगे, बहुत प्रथा है इसके पीछे। तो जब वो पहले आते हैं तो उनको ऐसे लपेटा जाता है, उनको गीत गोविंद खंडुए से, फिर उसके बाद सब बाद में चालू हो जाता है। जब भगवान जगन्नाथ को ऐसे गीत गोविंद वाला वस्त्र पहनाया जाता है तो वो वृंदावन के भाव में और आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जगन्नाथ भगवान कौन है। वो श्री कृष्ण है द्वारका के, परंतु वृंदावन के भाव में है, वृंदावन से और वृंदावन के भक्तों से विशेष रूप से विरह की भावना का अनुभव कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा एक विशेष उनका रूप है। तो खास करके गीत गोविंद, क्योंकि गीत गोविंद भी राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और विरह की भावना से संबंधित है, तो जब ये वस्त्र पहनाया जाता है उनको जो कि उनको पसंद है, तो और भी वो व्रज के भाव में प्रवेश करते हैं। और ऐसे कहा जाता है जगन्नाथपुरी में कि इस समय वृंदावन की गोपियां वहां आती है उनका दर्शन करने के लिए। तो ऐसे गीत गोविंद की प्रथा, जयदेव गोस्वामी की प्रथा आज तक चल रही है, और हर एक अनुष्ठान में गीत गोविंद गाया जाता है, जगह जगह पर आप देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये, एक ऐसा एक हिस्सा बन गया है जगन्नाथपुरी के संस्कार का, संस्कृति का, कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो जयदेव गोस्वामी वहीं पर रहे अनेक वर्षों तक, उनका तिरुभाव दिवस आज ही है, पौष महीने के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि में। विद्वानों के बीच में थोड़ा मतभेद है कि उनका तिरुभाव कहाँ हुआ, कोई कहते हैं वृंदावन में हुआ, वहाँ जब वो गए थे तो काफ़ी समय तक वृंदावन में रहे, किसी ने उनके लिए मंदिर भी बनवाया, लेकिन वो बाद में चले आए। परंतु कोई कहते हैं कि उनका तिरुभाव वृंदावन में हुआ, कोई कहते हैं उनका तिरुभाव उनके गांव केंदु बिल्व में हुआ, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य कहते हैं उनका तिरुभाव जगन्नाथपुरी में हुआ। तो इस दिवस पर उनका तिरुभाव हुआ। श्रील जयदेव गोस्वामी पाद की जय। आज श्रील लोचन दास ठाकुर का भी तिरुभाव दिवस है। दो शब्द केवल उनके बारे में बताएंगे। वो प्रसिद्ध हैं चैतन्य मंगल नाम के ग्रंथ के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के वर्णन करने वाले ग्रंथों में से सबसे पहले में से एक हैं। और वो शिष्य थे श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के, नरहरि सरकार ठाकुर के, नरहरि चक्रवर्ती दूसरे थे। और नरहरि सरकार ठाकुर श्रीखंड गांव में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। तो लोचनदास ठाकुर उनके प्रिय शिष्य थे। थोड़ी देर बाद लोचनदास ठाकुर श्रीखंड में गए अपने गुरु महाराज नरहरि सरकार ठाकुर के साथ में रहने के लिए। नरहरि सरकार ठाकुर ने उनको तरह तरह के कीर्तन के पद्धतियाँ सिखाई और उनके साथ में वहाँ रहे। लोचनदास ठाकुर भी नरहरि सरकार महाशय के तिरुभाव उत्सव में भी शामिल थे, ऐसे भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथों में वर्णन है। तो लोचनदास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर के किताब को चैतन्य भागवत नाम रखा, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि पहले जब वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना की तो इस ग्रंथ का नाम था चैतन्य मंगल, और लोचनदास ठाकुर के ग्रंथ का नाम भी चैतन्य मंगल था, इसलिए फिर वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ के नाम को बदला गया चैतन्य मंगल से लेकर चैतन्य भागवत। श्रील लोचनदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, काफी देर हो गई, कथा समाप्त करते हैं। किसी को एक दो प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे।